कृष्णा, सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया करके अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए या उसे साइलेंट मोड पर कर दीजिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। दूसरा अध्याय जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मज्ञान की व्याख्या अर्जुन से कर रहे हैं। इतने सारे श्लोक अर्जुन ध्यान पूर्वक भगवान के श्रीमुख से सुन रहे हैं और अब तक अर्जुन ने बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछा और भगवान को टोका भी नहीं। तो हालांकि इन सब श्लोकों में केंद्र अब भगवान के ऊपर है क्योंकि श्री भगवान उवाच चल रहा है, परंतु ध्यान में यह भी रखना होगा कि बैठे अर्जुन सुन रहे हैं। तो अर्जुन, जैसे कि आप देखो कोई वीडियो देखो तो कोई व्यक्ति यदि बात कर रहा है, उसके ऊपर कैमरा है, वो किसी से बात कर रहा है, तो हमारे मन में रहता है कि हाँ कोई आसपास कोई व्यक्ति है जिसे देखकर वो बात कर रहा है। तो भगवान ये सारे जो श्लोक बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, इसके साथ साथ हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अर्जुन को बोले जा रहे हैं और अर्जुन वहां बैठे इस आत्मज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं बिना टोके। तो अर्जुन से हम क्या सीखते हैं, श्रवण कैसा होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते भगवान ने कहा चार प्रश्न पूछे और इन चार प्रश्न पूछने के पश्चात भगवान अर्जुन को एक प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अर्जुन मैं तुमसे कुछ जानना चाहूंगा, इस आत्मज्ञान के विषय में मैं तुमसे कुछ जानना चाहूंगा कि कौन मारता है, कैसे मारता है, कौन मरवाता है, कैसे मरवाता है। तो यहां पर अर्जुन को प्रोत्साहित कर भगवान ये भी दर्शा रहे हैं कि एक जो वक्ता होता है उसे श्रोता के विषय में भी सोचता रहना चाहिए। ये नहीं कि बस बोलते जाओ कि आगे परवाह ही नहीं है, वो जिंदा है या वो गुजर गए। तो भगवान जो कि इतने प्रशिक्षित और निपुण वक्ता हैं, वो अर्जुन जैसे श्रोता के विषय में, हालांकि अर्जुन भगवान के सखा हैं परंतु फिर भी भगवान अर्जुन को बीच बीच में प्रोत्साहित करते हुए अर्जुन के प्रश्न ग्रहण करेंगे आगे चलकर भी, और ठीक अर्जुन के उन एक एक प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जो अर्जुन ने प्रथम अध्याय में भी पूछे उनको भी ध्यान में रखते हुए भगवान अब इस दूसरे अध्याय में और पूरी गीता में अर्जुन के एक भी प्रश्न को भूले नहीं भगवान। ये भी एक बहुत सुंदर गुण है एक भगवान जैसे वक्ता का। तो अब आज का श्लोक एक और प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय से, जो कि अर्जुन के साथ साथ भगवान हमें एक सुंदर उदाहरण से ये आत्मज्ञान को और सरल तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवान गृणाति नरो पराणि, त तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, भगवान कहते हैं जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वासांसि जीर्णानि तथा नवानि। जीर्णानि का अर्थ है जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर जब नए वस्त्रों को धारण करता है, यह बहुत सामान्य बात है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन उसी प्रकार से जो आत्मा है पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। तो पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध इस प्रकार से है, पिछले श्लोक में अर्जुन को ज्ञानी मान रहे थे भगवान, अब इस श्लोक में अर्जुन को व्यावहारिक ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि साधारणतः जो ज्ञानी होते हैं वो व्यावहारिक ज्ञान को इतना मायना नहीं देते, उनको कुछ जटिल चाहिए, समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो यहां पर हालांकि पिछले श्लोक में भगवान ने जो प्रश्न पूछे वो एक ज्ञानी की बुद्धि को उकसाने के लिए, क्योंकि अर्जुन बहुत ज्ञान प्रस्तुत कर रहे थे प्रथम अध्याय में, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को एक ज्ञानी का पद दे दिया पिछले श्लोक में। और इस श्लोक में भगवान एक बहुत ही सर्वसाधारण व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है इस आत्मज्ञान को समझने के लिए, एक साधारण से साधारण बुद्धि वाला मनुष्य भी जैसे वस्त्रों को इस्तेमाल करता है और त्यागता है वो समझ सकता है कि कैसे ये आत्मा शरीर को अपनाता है और त्यागता है। तो यहां पर भगवान मानो बैलेंस कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी के साथ सिंपल एक मैसेज उदाहरण के द्वारा। इसलिए शास्त्रों में श्रीमद् भागवत और अन्य जो पुराण हैं उनमें आप देखोगे कि उदाहरण के द्वारा बहुत से कठिन और जटिल सिद्धांत को सरलता से प्रस्तुत किया गया है उदाहरणों के द्वारा। जैसे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें यदि हम पढ़ें तो उदाहरण के ऊपर उदाहरण, और ऐसे उदाहरण जो कि बहुत व्यावहारिक हैं, ऐसे उदाहरण जो हम इस भौतिक संसार में भली भांति समझ पाएंगे। अब देखिए ये उदाहरण यदि लिया जाए जो भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं वस्त्र का उदाहरण, तो कौन दे रहा यह उदाहरण? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्हें न तो कोई भौतिक शरीर है न कभी उनके वस्त्र जीर्ण होते हैं। जो वस्त्र भी वो पहनते हैं ऐसा नहीं कि यशोदा माई को हर दिवाली पर नए नए कपड़े लाकर देने पड़ते हैं। भगवान से संबंधित जो कुछ है कभी वो जीर्ण नहीं होता। तो भगवान ये उदाहरण अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हमको दे रहे हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में हमारा अनुभव, विशेष रूप से कलयुग में वस्त्रों के पीछे बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है मनुष्यों ने, है कि नहीं? तो इसलिए ये वस्त्रों का उदाहरण ये बहुत उपयुक्त है, बहुत व्यावहारिक, प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडेबल, समझने लायक। तो इसलिए तुरंत वो जटिल सिद्धांत के पश्चात भगवान अब इस व्यावहारिक उदाहरण से उस सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हम भगवान के केवल इस उदाहरण को लेकर चर्चा करेंगे वस्त्रों के ऊपर। तो इन चित्रों में हम देख रहे हैं कि एक शरीर होता है, शरीर के ऊपर व्यक्ति वस्त्र पहनता है। तो ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद भी दिया करते थे कि जैसे कोई यदि थ्री पीस सूट पहने हुए है तो उसके अंदर एक शर्ट पहनता है, है ना? तो ये उदाहरण दिया गया है कि वो कोट जो है, वो मोटा मोटा कोट जो है, उसकी तुलना जैसे यहां पर आप पढ़ रहे हो स्थूल शरीर से जो पंच महाभूत का बना, और उसके अंदर उसने क्या पहना है वो दिखाई नहीं देता, इतना थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है यहां, लेकिन वो ठीक प्रकार से अंदर उसने किस प्रकार का शर्ट, फुल स्लीव पहना है, हाफ स्लीव पहना है, या स्लीव्स ही नहीं है, या पता नहीं केवल इतना ही है, तो वो जो अंदर का कपड़ा है उसकी तुलना सूक्ष्म शरीर से की है, और वो जो शरीर है उस शरीर की तुलना किससे होगी? आत्मा से। तो अब ये भी एक बहुत ही व्यावहारिक और साधारण उदाहरण है। इससे हमें यह ध्यान में रखना है कि सूक्ष्म और स्थूल शरीर ये दोनों भौतिक है। जैसे कि जो कोट होता है वो भी धागों से बनता है, हालांकि इतना मोटा होता है लेकिन बनता है वो भी धागों से ही, वो भी कपड़ा ही है, और उसके अंदर जो पतला सा शर्ट जिसने पहना है वो भी धागों से ही बना है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी भौतिक है। कई बार लोगों को लगता है कि ये जो मन बुद्धि ये सब स्पिरिचुअल है, ये सब आध्यात्मिक है, नहीं, ये भी भौतिक है, लेकिन जो उसके अंदर आत्मा उसको धारण किए हुए है, जैसे कि शरीर उसको धारण किए हुए, तो प्रमुखता किसको दी जाती है? उस व्यक्ति को जिसने वो पहना हुआ है। अब जैसे कि यहां पर आप देखो ये कोट किसने पहना हुआ है, किसने पहना है कोट? टंगा हुआ है, या वो दुकानों में आप देखोगे बड़े बड़े शहरों में दुकानों में बाहर वो पुतले खड़े रहते हैं कुछ पहन के, अंग्रेजी में उनको कहते हैं मैनेक्विन। ये एक और उदाहरण हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी दे रहे थे कि वो पुतले जो हैं, वो दुकान के बाहर पुतले खड़े होते हैं, मान लो कि वो पुतले, एक किसी पुतले को लेकर किसी ने उसको उसके ऊपर पुलिस कमिश्नर का यूनिफॉर्म चढ़ा दिया, पूरा मेडल वेडल लगाकर पुलिस कमिश्नर का यूनिफॉर्म, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट वहां से गुजरते हुए उसको सैल्यूट मारता रहेगा? हालांकि उसे जो पदवी दी गई है वो वर्दी में जो मेडल्स वगैरह यहां पे स्टार्स वगैरह जो लगते हैं उसको सैल्यूट मारता है जो हवलदार या जो भी सब इंस्पेक्टर, लेकिन वो उस व्यक्ति को भी मायना देता है जिसने पहना हुआ, वो पुतले को नहीं सैल्यूट मारेगा। तो वैसे ही भगवान यहां समझा रहे हैं कि जैसे कि ये उस व्यक्ति ने कुछ नहीं पहन रखा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कोट और वो जो शर्ट है, वो जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति। ये भगवान इस उदाहरण से हमको समझा रहे हैं आज। तो भगवान का ये आज का उदाहरण यदि हम लें और इस का विश्लेषण करें, तो सर्वप्रथम आज हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, मृत्यु के पूर्व नया देह निश्चित हो जाता है। मृत्यु से पहले जो नया देह है वो निश्चित हो जाता है। विकसित जीवात्माएं स्वयं नवीन शरीर का चुनाव करती हैं, उनके ऊपर निर्भर है। देह परिवर्तन एक सामान्य घटना है, भगवान समझा रहे हैं श्लोक के द्वारा। और देह की चिकित्सा वस्त्र में टांका लगाने के समान है। वही वस्त्र का उदाहरण लेकर हम देह को और समझें। वस्त्र परिवर्तन में कष्ट की अनुभूति कैसे देखी जाती है, और अंततः आज हम चर्चा करेंगे कि पशु पक्षियों के शरीर बेढंगे वस्त्रों के समान है, क्योंकि आत्मा उनके अंदर भी है लेकिन उनका जो वस्त्र है उस आत्मा के ऊपर वो थोड़ा बेढंगा है। तो ये कितने 6 मुद्दे हुए, तो ये 6 मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, मृत्यु के पूर्व नया देह निश्चित हो जाता है। ये कैसे? वस्त्र का उदाहरण ले यदि, जो भगवान ने आज के श्लोक में दिया है। जैसे कोई व्यक्ति नया वस्त्र पहनना चाहता है तो वो निश्चित करता है ना, वो दर्जी के पास जाता है, अपना माप देता है, ये कहता है ये कपड़ा लो, ये मेरा माप है, मुझे 1 महीने में ये वस्त्र तैयार चाहिए। और कई बार वो दर्जी अभी तक वो उस वस्त्र को सीला भी नहीं, लेकिन वो लगा लोगों के देखता रहता है आईने में, कैसा लगेगा ये मेरे ऊपर, है ना। खैर आजकल तो सब क्या वो रेडीमेड, हाँ, डिजाइनर फैशन वो सब चल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें वो सब पहले से उनके मन में पूर्व निर्धारित कुछ होता है कि मैं किस प्रकार का वस्त्र, जैसे कि दिवाली आ रही है या किसी समारोह में उसे जाना है, किसी की शादी में जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो वो निर्धारित करता है पहले कि। तो मृत्यु से पहले देह निश्चित हो जाता है। तो यहां पर यदि हम कुछ उदाहरण लें कि जीवात्मा का उदाहरण बच्चे के उदाहरण से दिया गया है, परमात्मा पिता भौतिक प्रकृति दर्जी है और जीवात्मा के कर्म वो उसका माप। तो जैसे एक बच्चा, उसे पता नहीं कि मेरे लिए कौन सा वस्त्र अच्छा है कौन सा वस्त्र बुरा है, तो उस बच्चे के लिए उसके जो पिता हैं वो चयन करते हैं, है ना, माता पिता। तो भगवान गीता में कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है जीव को विभिन्न प्रकार के शरीर देती हैं और योनियों में डालती है। तो यदि परमात्मा जो कि हमारे कर्मों को जानते हैं भली भांति, कर्मों को छोड़ दीजिए, परमात्मा हमारे एक एक इच्छा को जानते हैं जो हमने अब तक जब से सृष्टि हुई है तब से अब तक कितनी सारी इच्छाएं हमने कौन से समय कौन सी योनि में कौन से स्थान पर कितनी तीव्रता में की, सब का रिकॉर्ड परमात्मा के पास। तो भौतिक प्रकृति जो कि परमात्मा के निर्देशन में कार्य करती है, ये भौतिक प्रकृति, इसका काम केवल दर्जी का काम है। दर्जी को क्या ऑर्डर दिया जाता है ना, ये इसमें इतने पॉकेट होने चाहिए, इसमें पॉकेट नहीं होना चाहिए, जो भी दर्जी को बोलता है ना, तो उस प्रकार से जो परमात्मा है वो भौतिक प्रकृति को उस जीव के कर्मों के अनुसार उसका माप क्या होगा वो भी उसके ऊपर निर्भर नहीं, उसके कर्मों के ऊपर निर्भर है। तो जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को बहुत तंग कोई कपड़ा पहनना है, टाइट कपड़े लोग पहनते हैं, तो उसका शरीर भी वैसा होना चाहिए। अब उसको एकदम छोटे छोटे कपड़े चाहिए लेकिन शरीर इतना बड़ा, तो होगा नहीं ना। तो उसके शरीर के अनुसार उसका दर्जी माप ले पाएगा। तो जो भी यदि उसका कमर है, कमरा है, जो भी है, जो भी उसका माप है, वो उसने कितना खाया है, कितना वो अभी शरीर के अंदर लिया है, वो सब उसके अनुसार उसका माप होगा, कितना लंबा चौड़ा जो भी। तो जो हमारे कर्म हैं, हमारे कर्मों के अनुसार भौतिक प्रकृति जो हमें नया वस्त्र सीके देती है। जैसे कि एक हम अक्सर ये कथा हमारे प्रवचनों में सुनाया करते हैं, ये इस एक व्यापारी की जो कि अपना सारा धन खो देता है, समुद्र से आ रहा होता है, ये सारा धन खो देता है और फिर तैरते तैरते वो एक ऐसे द्वीप पर पहुंचता है जहां पर एक बहुत विचित्र प्रकार का राज्य है और लोग विचित्र लोग वहां पर रहते हैं जो उसे राजा बना देते हैं। वो जैसे द्वीप पे पहुंचता है उसे राजा बना देते हैं, पालकी पे बिठाकर जय हो राजा राजा हमारा। तो अब ये राजा बन गया है वहां पर, ये उनको जानता नहीं, वो इसको जानते नहीं। तो फिर वो मंत्री को पूछता है एक दिन कि तुम मुझे जानते नहीं और मुझे राजा क्यों बना दिया। तो मंत्री फिर वो रहस्य खोल कर कहता है इसे कि ये हमारी प्रथा है कि साल के इस समय जो भी व्यक्ति उस दिशा से, पूरब दिशा से हमारे द्वीप में आता है वो राजा बनता है एक साल के लिए, और उसके बाद वो द्वीप देख रहे हैं वहां पर उस खंडर वीराने द्वीप में फेंका जाता है वो एक साल के बाद। एक साल तक वो राजा, एक साल के बाद उसकी स्थिति वहां, दुर्गति वहां होती है, फिर एक और भगवान भेज देते हैं, दूसरा राजा, अगला राजा। तो अब ये जो अब राजा बन चुका है यहां या बनाया जा चुका है, ये करता क्या है कि ठीक है मेरे पास एक साल है, तो सारे मंत्रियों को बुलाता है, जितने राज्य की संपत्ति वो सबको कहता है कि ये सारी संपत्ति, सारी सेना, सारे नागरिक लग जाओ और वो जो वहां पर द्वीप है उसको पूरा भरा पूरा कर दो इस राज्य के समान। तो ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति निकला, जितने सारे वहां पे राजा बनाए गए आज तक। वो मंत्री कहा कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि हमारे लिए केवल एक वर्ष है, तो जितना सारा धन था बस वो ऐशो आराम में उन्होंने उड़ा दिया और फिर वहां फेंके गए। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये मनुष्य देह जो हमें मिला है, ये मनुष्य देह इसलिए मिला है कि हमारा अगला देह किस प्रकार का हो उसे सुधारने के लिए अभी से हम कर्म में लग जाएं उस प्रकार के। तो भगवान यहां पर इस वस्त्र के उदाहरण से ये शिक्षा सर्वप्रथम हमें देना चाहते हैं कि जैसे कि वस्त्र को हम अपने अनुसार, अपने माप के अनुसार दर्जी से बनवाते हैं, उसी प्रकार से ये जो मृत्यु के पश्चात नया देह वो हम हमारे कर्मों के साथ, कर्मों के द्वारा निश्चित कर सकते हैं। अब जो विकसित जीवात्माएं वो स्वयं नवीन शरीर का चुनाव करती है। अब देखिए, जो साधारण व्यक्ति हैं, साधारण चेतना वाले या इंद्रिय भोग में लगे हुए, वो ये तो जानते हैं कि उन्हें अगला वस्त्र मिलने वाला है, लेकिन कौन सा मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है, कितने समय तक वो कपड़ा टिकेगा मेरे ऊपर, इसका ज्ञान नहीं। परंतु जो विकसित जीवात्माएं होती हैं, जो किसी आध्यात्मिक पथ में लगती हैं, उन्हें दिव्य ज्ञान से पता लग जाता है कि उनका अगला शरीर किस प्रकार से होगा। जैसे भगवान गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, जो देवताओं को पूछते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, वो जानते हैं कि मैं जिस देवता को पूज रहा हूं, क्यों पूज रहा हूं, क्योंकि उसके लोक में उसी की तरह मैं जन्म लूंगा। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के बीच जन्म लेते हैं, परंतु जो मेरी पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, उन्हें मृत्यु से कोई भय नहीं, बल्कि वो तो प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब मृत्यु की घड़ी आए, क्योंकि उनके लिए मृत्यु की घड़ी का अर्थ क्या है, ये जो वस्त्र जो इतने तकलीफ दे रहा है, ये शरीर को बस कायम के लिए छोड़ देना और फिर भगवान के धाम आध्यात्मिक शरीर में प्राप्त होना। जैसे उदाहरण दिया गया है लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज कि अरेंज्ड मैरिज में जो वधु है वो विदाई के समय रोती है ना, वो रोती है क्योंकि उसे डर बना रहता है कि अब ससुराल, सब जानते हैं ससुराल में क्या होता है, तो अब ससुराल में जा रही है, डर बना है कि पता नहीं ससुर कैसा होगा, ससुर होगा कि असुर होगा। फिर सास मुझे सांस लेने देगी कि नहीं, पता नहीं। तो वो एक कारण ये रोने का कि भविष्य का डर रहता। लेकिन लव मैरिज में क्या देखा गया है कि वो पहले से जा चुकी है, सब जानती है कि कौन कौन है, घर का कैसा है, लोग कैसे हैं, तो इसलिए वो जो विदाई के समय वो विदाई के समय जो वो वधु होती है उसको इतना रोना नहीं आता, क्योंकि उसको पता है, वो रोना भी तो नाटक होता है, वो जो उसकी सीढ़ी बनेगी उसके लिए वो होना चाहिए ना, शादी की सीढ़ी के समय होना चाहिए ना कि वो लोग बोलते हैं अभी विदाई विदाई विदाई, नीचे विदाई लिखे रो रो। तो वैसे ही एक जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त वो जानते हैं कि भगवान के आध्यात्मिक संसार में उनका प्रेम किससे, भगवान से हो चुका है, तो शरीर त्यागने के बाद वो भगवान के धाम जाने ही वाले हैं, निश्चित, सब कुछ कंफर्म्ड है। तो इसलिए जो विकसित जीवात्माएं हैं, यदि इसी उदाहरण को हम लें, तो वो भली भांति जानते हैं कि जो अगला वस्त्र उन्हें मिलने वाला है वो वस्त्र वो निश्चित रूप से जीर्ण नहीं होगा, विशेष रूप से जो आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करते हैं उनके संदर्भ में। अब भगवान जो इतना एक सरल सा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वस्त्र का, तो इसके द्वारा भगवान अर्जुन को और हमको ये बताना चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है ये, मरने का जो कार्यक्रम है ये बहुत बड़ा, इसको इतना तुम लोग इस भौतिक संसार में देखे मरने की बात करते, नहीं 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 शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ। अरे वो जो कर्म कर रहा है वो कौन सा शुभ है? तो यहां पर भगवान इसको एक सामान्य घटना मान रहे हैं, ये देह परिवर्तन को। कैसे? जैसे कि रोज कोई व्यक्ति वस्त्र बदलता है, कई बार तो तीन तीन चार चार बार बदल देते हैं दिन में, है ना? नाइट के लिए अलग होता है नाइट ड्रेस, फिर ऑफिस के लिए अलग होता है, फिर इवनिंग पार्टी के लिए अलग होता है, खेलने के लिए बीच में क्लब में जाने के लिए अलग होता है। तो वो जब भी मानो, अब देखिए कल्पना कीजिए कि कोई घर पर आकर कपड़े बदल रहा है, तो वो अब ऑफिस से आया, ऑफिस से आने के बाद नहा धो के अब उसने थोड़े कैजुअल कुछ कपड़े पहने, तो कपड़े वो दूसरे पहन के आया तो सब घर में रोने लगे, क्या ये क्या किया, ये क्या किया। मानो घर में अगर सब रोने लग जाए, बोले रो क्यों रहे, अरे कपड़े बदल। तो ये एक सामान्य घटना है, हालांकि कलयुग में तो बहुत कम बदलने पड़ते हैं, होते नहीं ज्यादा। अब भगवान इसके द्वारा समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम प्रभावित होते हो क्या? तुम जब कपड़े अपने वस्त्र बदलते हो तो तुम क्या प्रभावित होते हो इससे? या भगवान ये अर्जुन को बताना चाहते हैं कि जब कोई नया वस्त्र पहनता है तो उल्टा खुश होना चाहिए उसे, तो है कि नहीं, कि ये पुराना जीर्ण जो वस्त्र है वो अब बदल कर मैं नया वस्त्र, तो उसे तो खुश होना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण भगवान ने, वस्त्र का उदाहरण जो लिया है ना, ये एक श्लोक यदि हम समझ लें तो ये जो आसक्ति ना शरीर से, ये पूर्ण रूपेण खत्म हो सकती है यदि इसका हम साक्षात्कार कर लें। तो यदि जीर्णानि वासांसि और नवानि वासांसि, तो पुराने वस्त्र भगवान बोल रहे हैं, फिर नए वस्त्र। अच्छा, अब कईयों के वस्त्र बहुत तड़क भड़क रंग बिरंगे होते हैं, तो उसे त्यागने में उनको तकलीफ होती है। कोई यदि केवल साधारण से वस्त्र पहनता है तो उसे त्यागने में उसे इतनी तकलीफ नहीं होती, कि जैसे कई बार लोग ऐसे ऐसे कपड़े खरीदते हैं आजकल, तो 5-5 हजार का शर्ट, पता नहीं आजकल तो रेट और भी बढ़ गया होगा, परंतु मुझे बताया गया था 5-5, 10-10 हजार के ये सब डिजाइनर कपड़े। अब सोचिए कि यदि उसने इतना खर्चा किया है, इतने हजार रुपए डाल डाल के वो कपड़े पहना है और वो कपड़ा फट जाए, तब तो वो उसका हृदय फट जाएगा। और हमारे ब्रह्मचारी धोती फट जाए ये फट जाए चलता रहता, उसमें क्या है? उसको टांका लगा के फिर हाँ पहनते रहते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि जब कोई अपने इच्छा और कर्मानुसार ऐसा शरीर पाना चाहता है कि मेरा शरीर ऐसा हो कि दिखने में इतना सुंदर और शक्तिशाली, तो जितना ज्यादा उसका शरीर उस कर्म के अनुसार, इच्छा के अनुसार उसे मिलेगा, उतनी उसकी चेतना उस शरीर में बनी रहेगी। जैसे कि फिर से यदि वस्त्रों का उदाहरण हम लें, तो अब देखिए किसी ने बहुत कीमती वस्त्र पहने हुए हैं और बहुत तड़क भड़क वस्त्र पहने हुए, तो जहां पर भी वो चलता है उसकी चेतना हर समय वो पूरे पूरे वस्त्रों पे होती है। बारिश के मौसम में यदि चल रहा है तो गाड़ी कहीं से वो कीचड़ उठा के न उसके ऊपर, तो उसकी चेतना, हिज कॉन्शियसनेस इज ओनली ऑन व्हाट आई एम वेयरिंग, कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा, उनको वो देखा क्यों नहीं। तो होता क्या है कि जितने कीमती वस्त्र, जितने रंग बिरंगी तड़क भड़क वस्त्र, उतनी चेतना वस्त्रों में। तो वैसे ही जितना ज्यादा सुंदर शरीर, जितना ज्यादा वो उस देहात्म बुद्धि में डालने वाला शरीर, उतना जीव के लिए वो एक रोढ़ा है। जैसे कुंती महारानी कहती हैं कि जो अच्छा रूपवान है ये भक्ति में एक विपदा है, एक अड़चन भक्ति में उसकी। तो अब ब्रह्मा जी, यदि ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखा जाए तो वो उनकी एक पलक झपकती है, उन्होंने जो शरीर हमको दिया है इतने सारे वस्त्र, वो एक पलक झपकते हैं तो एक सेकंड में लाखों हमारे कितने वस्त्र जीर्ण होकर चले गए। तो जैसे कि हम पलक झपकते हैं, ये कोई बहुत न्यूज बनती है कि आज शिक्षाष्टकम दास ने पलक झपकी, हेडलाइंस। तो ब्रह्मा जी की दृष्टि से यदि देखा जाए, जो कि ये हमें वस्त्र देकर अपने ब्रह्मलोक में हैं, तो उनकी दृष्टि में एक सेकंड में हम कितने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, लाखों करोड़ों। लेकिन हमारी दृष्टि में हमने ये जो वस्त्र अभी पकड़ रखा है, हमें ये कितना महत्वपूर्ण लगता है, ये मेरा शरीर भारतीय जो अभी पैदा हुआ महाराष्ट्र में, इस परिवार में, और कितना सुंदर, क्या ये वो सब कुछ। तो हम कितना ये एक इतना जो नगण्य वस्त्र है उसके ऊपर हम कितना जोर देते हैं, जबकि ब्रह्मा जी की दृष्टि में वो पलक झपने में कितने लाखों हमारे ऐसे हमने छोड़ दिए और पकड़ लिए। तो इसलिए इन सब मुद्दों को देखते हुए भगवान ये बता रहे हैं कि देह परिवर्तन एक बहुत ही सामान्य घटना है। अच्छा, अब ये एक अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं वस्त्रों के साथ, कि देह की चिकित्सा वस्त्र में टांका लगाने के समान है। कि अब जो रोगग्रस्त शरीर हो जाता है, वो मतलब वस्त्र फट गया थोड़ा, तो चिकित्सा जो करते हैं उसकी तुलना अब टांका लगाने के समान। और चिकित्सक कौन है? दर्जी। तो ये शरीर बीच बीच में, ये जो वस्त्र है बीच बीच में कहीं कहीं फट जाता है, तो कई बार हम खुद ही सुई धागा लेकर घर में ही कर लेते हैं। लेकिन यदि ऐसा फटा है कि उसको दर्जी के पास ले जाना पड़े, क्या करते हैं, रफू कराना पड़ता है। तो किसी ना ये ना कहीं ना प्रकार है ना, बस ये वस्त्र को सिल सिल के हम बस आगे जीना चाहते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि जो दर्जी है उसके भी कपड़े फटने वाला है जो हमारा सिल रहा है। तो इसलिए भौतिक संसार में दर्जियों के ऊपर बहुत विश्वास है कि जो भी हो मेरे वस्त्र को ये दर्जी ठीक कर देगा। लेकिन वो दर्जी भी एक दिन बोल देगा, मैं अब ये वस्त्र को टच भी करूंगा तो सब चिथड़े चिथड़े हो जाने वाले हैं, इतना जीर्ण हो गया है, तो बदल दो इसको, दूसरा वस्त्र ले लो। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हालांकि वस्त्र फटेगा, उससे प्रभावित न होके हम ऐसे कर्म करें कि हमें कोई ऐसा वस्त्र मिले जो कभी ना फटे और कभी टांका लगाने की आवश्यकता न पड़े। अब वस्त्र परिवर्तन के समय क्या कष्ट की अनुभूति होती है? यहां पर इस उदाहरण से यदि देखें हम कि एक बच्चा जो होता है, अब देखो बच्चे को कपड़ा चेंज करने की कोशिश करो कितना रोता है वो, देखो है ना। तो जो अज्ञानी पुरुष हैं वो नहीं जानते कि वस्त्र परिवर्तन उसके लिए अच्छा है, परंतु जो आत्मज्ञानी है वो वयस्क व्यक्ति की तरह वो खुद जा जाके बदलते कपड़े। बच्चों को तो पकड़ पकड़ के उनके कपड़े बदलवाने पड़ते हैं और रोते हैं उसमें वो। इसलिए जो आत्मज्ञानी है वो जानता है कि ये जो पुराना वस्त्र अब जीर्ण होके चला गया, अब मुझे नया वस्त्र मिलेगा। लेकिन आत्मज्ञानी वो है जिसने कर्म भी आत्मज्ञान की नींव पर किए हैं, इसलिए वो जानता है कि विकसित आत्मा है वो आत्मज्ञानी। इसलिए वो जानता है कि अगला जो वस्त्र मुझे मिलने वाला है वो इस वस्त्र से अच्छा है। अच्छा, बच्चे और अज्ञानी का उदाहरण यदि हम लें तो वो व्यक्ति है जिसे भविष्य का कुछ ज्ञान नहीं, या उसे यह बता दिया जाए कि तुम्हारा अगला वस्त्र जो है वो इस वस्त्र से भी बदतर है, तब वो क्यों छोड़ेगा इसको? जैसे कि मृगरारी को नारद मुनि ने बता दिया कि तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें किस प्रकार के आगे के वस्त्र मिलने वाले, नरक में कैसे कौन से वस्त्र मिलके तुम वहां पर यातना भुगतोगे, तो मृगरारी वो डर गया। वैसे ही जो व्यक्ति मरने से डरते हैं, मरने से जो भयभीत हैं, ये जान लेना चाहिए कि जो भविष्य का वस्त्र है उससे डर रहे हैं वो, सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि ऐसे निर्वस्त्र रहना पड़ेगा, मतलब कि आगे का जीवन है कि नहीं, जो जीवन है बस उसी को भोग लो पूरा। और उनको पता है कि कर्मों के अनुसार उनका अगला जो वस्त्र है वो तो बहुत बदतर वस्त्र मिलने वाला है, इसलिए जो अभी का वस्त्र है किसी न किसी ये न के न प्रकार इसको पकड़ के रखो। अब हमारा अंतिम मुद्दा, पशु पक्षियों के शरीर बेढंगे वस्त्रों के समान। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि आत्मा आध्यात्मिक संसार से आया हुआ है तो क्या रूप है उस आत्मा का? जैसे जो क्रिश्चियन सिद्धांत है उसमें भी वो कहते हैं मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, कि जो मनुष्य है वो भगवान की एक प्रतिमूर्ति है। तो जैसे हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं इस मनुष्य देह में, हमारी इस प्रकार से इंद्रियां हैं, ये आकार हमारा जो है मनुष्य का आकार भगवान के आकार में इसे ढाला गया है, ये नहीं कि भगवान हमारे आकार में ढाले गए। तब फिर आत्मा जब पशु के शरीर में जाता है तो ये पशु के शरीर में जाने का अर्थ है कि मानो कोई व्यक्ति ऐसा बेढंगा वस्त्र पहना है कि आपको समझ में नहीं आता कि वो उसके हाथ कहां है, पैर कहां है, है अंदर आदमी लेकिन उसने वस्त्र ऐसे पहने जैसे कि अब ये व्यक्ति पता नहीं कौन सा फैशन है, लेकिन कोई अगर ऐसे बेढंगे वस्त्र, या ये व्यक्ति, अब पता नहीं इसके हाथ हैं कि नहीं, पैर हैं कि नहीं, केवल सर दिख रहा है, तो इस चित्र से क्या समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति ने ऐसे बेढंगे वस्त्र पहन रखे हैं जिससे इसका जो स्वरूप है आदमी होने का स्वरूप पूर्ण प्रकार से नहीं दिख रहा। तो जो पशु के शरीर में आत्मा जाता है तो वो इतना ज्यादा ढक जाता है गुणों, तमोगुण रजोगुण इसके प्रभाव से इतना ढक जाता है कि उसका जो वास्तविक आकार है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये देखिए वस्त्र पहने हुए ना, तो जितने अब इनकी ऐसी इच्छा हुई इसलिए ऐसे वस्त्र पहने, तो ऐसे वस्त्र क्यों पहने हैं? ताकि लोग ये जो व्यक्ति हैं उन पर ध्यान न देके इनके वस्त्रों पर ध्यान दे। तो होता क्या है कि जब आत्मा किसी पशु की योनि में इतना नीचे गिर जाता है, जैसे कि कई ऐसे ऐसे योनियां हैं जैसे पेड़, कुछ आकार नहीं समझ में आता है कि आत्मा का क्या इसके अंदर आकार होगा, कहां पर है बस, तो इतना बड़ा एक बस लकड़ा उगा हुआ है। जैसे कि यहां पर जैसे ही हमने ये चित्र देखा तो हमारा ध्यान उन व्यक्तियों के ऊपर नहीं गया है ना, ये सब जो भी हड्डियां वड्डियां चित्र बनाया हुआ है, ये देखिए तुरंत हमारे मन में क्या ध्यान में आ रहा है कि आदमी नहीं दिख रहा, आदमी है कहीं तो अंदर छिपा हुआ, लेकिन ऊपर वस्त्र के वजह से। तो इन चित्रों से और भी हम आप दिखाएंगे कि इन चित्रों से क्या समझ में आ रहा है कि वस्त्रों पर इतना ध्यान हमारा चला जाता है कि जो असली व्यक्ति है उसके अंदर, वहां से हमारा ध्यान हटा देता है वस्त्र। यही माया देवी करती है कि ऐसे ऐसे वस्त्र बनाकर देती है आत्मा को कि आत्मा फिर उन वस्त्रों में इतना लीन हो जाता है कि अपने असली अस्तित्व को आत्मा भूल जाता है। ये देखिए अब ये मेंढक है लेकिन इसको वस्त्र पहनाया गया एक राजा का, जैसे राजा का ताज होता है, जो भी राजा के वस्त्र। अब यहां पर इससे पहले हम चित्र देख रहे थे कि मनुष्य यदि जानवर का वस्त्र पहन ले तो किस प्रकार से वो वस्त्र भ्रमित करते हैं। अब यहां पर पशु जब मनुष्यों का वस्त्र पहनते हैं, अब जैसे पाश्चात्य देश में देखे जाते हैं, देखो कुत्तों को ऐसे वस्त्र पहनाते हैं, ये असली एक कुत्ता है, देखिए अभी इसको विग विग पहना के ये कर दिया ऐसे। अच्छा यहां पर देखिए कि बंदर कौन है और मनुष्य कौन है। इसमें ये दिखाई दे रहा है कि वस्त्र परिवर्तित करने से वो व्यक्ति परिवर्तित नहीं होगा, उसको बंदर का कपड़ा पहना दो या इसको बच्चे का कपड़ा पहना दो, लेकिन ये बंदर बंदर ही रहेगा और वो आदमी आदमी रहेगा। अब ये कोई सुपरमैन या बैटमैन नहीं बन गए ये पहन पहन के, इनको भी पता नहीं होगा कि इनको क्या पहनाया गया है। लेकिन यहां पर तुरंत ये हमारे मन में आ जाता है कि वस्त्रों को देखकर कैसे हम सच्चाई को बहुत कम मात्रा में जान पाते हैं। ये देखिए ये सब असली चित्र हैं कि ये सब पाश्चात्य देश में ही हो सकता है कि मानो कहीं फैशन शो में जा रहा है। इसको देखिए तो अब जैसे हम लोग हंस रहे हैं ना इसके वस्त्रों को देखकर, वैसे ही भगवान और भौतिक प्रकृति हमारे वस्त्रों को, ये शरीर को देख के हंसती है। क्योंकि जैसे कि हमें क्यों हंसी आ रही, ये कुत्ते के वस्त्र नहीं है, है ना, जबरदस्ती उसको किसी ना किसी प्रकार से वो सब कुछ डाला गया है, ये कुत्ते के वस्त्र नहीं है, उसी प्रकार से ये जो शरीर है ये आत्मा का ओरिजिनल ड्रेस नहीं है। कितना बेढंगा लग रहा है इसके ऊपर, इस कुत्ते के ऊपर। लेकिन वही जब आदमी पहन लेगा तो उसकी फोटो खींची जाएगी, इसकी भी खींची है, लेकिन वो फिर लोग अपने अपने कमरे में लगाते हैं कि ये मॉडल है ये वो, इसकी कोई नहीं लगाएगा। तो हमें ये समझना है कि ये जो शरीर ये कैसे एक वस्त्र, बेढंगा वस्त्र है आत्मा के ऊपर। लोग इतना शरीर शरीर करते हैं कि मेरा शरीर कितना सुंदर है, कितना शक्तिशाली है, कितना सुदृढ़ है, निरोगी है, ये है वो है, परंतु भौतिक प्रकृति और भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से ये एक मजाक है आत्मा का, बस और कुछ नहीं। तो अब शरीर का उदाहरण आज भगवान ने वस्त्र के द्वारा दिया। शास्त्रों में शरीर के और भी उदाहरण दिए गए हैं। शरीर का उदाहरण श्रील प्रभुपाद मकान का एक उदाहरण भी दिए हैं अपने प्रवचन में। ये शरीर मकान के समान है, ये एक उदाहरण पुराणों में है। शरीर बिजली के समान है, शरीर की तुलना गाड़ी से की गई है, और वृक्ष के पत्ते। तो क्या समझ में आया है हमें इन उदाहरणों से? परिवर्तनशील, जैसे वस्त्र वो हम बदलते रहते हैं, वैसे शरीर हमें बदलता रहना है। जैसे कि मकान कोई व्यक्ति, विशेष रूप से कलयुग में तो बहुत बदलता रहना पड़ता है मकान। इन सब उदाहरणों में से हम देखें तो एक चीज है, क्या है कि ये मकान बिजली, बिजली जैसे बादलों में आप बिजली को देखो तो बिजली एक क्षण किसी एक बादल के ऊपर रहती है, दूसरे क्षण दूसरे बादल पर। उसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर परिवर्तन है बिजली के समान, जैसे बिजली परिवर्तनशील रहती है, जैसे गाड़ी, ड्राइवर जो है वो गाड़ी बदलते रहता है लेकिन उसका कार्य एक ही है, गाड़ी चलाना। और वृक्ष के ऊपर पत्ते, नए पत्ते आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं, फिर नए आते हैं, पुराने वो हो जाते हैं, वो भी झड़ जाते हैं, उस प्रकार से। तो यहां पर इन सब उदाहरणों में भगवान ने वस्त्र का उदाहरण चुना, बहुत विशेष है, क्योंकि व्यक्ति वस्त्र को हर समय धारण किए रहता है, चलते फिरते वो वस्त्र हर समय उसके ऊपर रहते हैं। उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर ये शरीर हर समय हावी है। तो इन सब उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि शरीर अस्थाई है परंतु इसका व्यवहारिक महत्व है। जैसे कि कपड़ों का महत्व है कि नहीं, जरूरी है ना कपड़े पहनना, तो जैसे कपड़े पहनना जरूरी है, लेकिन कब तक? जब तक वो शरीर को संरक्षण दे या शरीर को सुंदर बनाए। उसी प्रकार से ये जो शरीर है ये आत्मा के ऊपर एक महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा वो आत्मा आत्मा का साक्षात्कार कर पाएगा इस शरीर को इस्तेमाल करते हुए। जैसे हम कपड़े पहनकर कितने सारे कार्य करते हैं, वैसे आत्मा इस शरीर को पहनकर भगवत धाम जा सकता है, अर्थात इसको इस्तेमाल कर। तो यहां पर भगवान ने इस श्लोक में शरीर की भर्त्सना नहीं की है। भगवान ने इस श्लोक के द्वारा जो उसका वास्तविक कर्तव्य है शरीर का, जैसे वस्त्र का वास्तविक कर्तव्य है डूइंग द नीडफुल, वैसे भगवान यहां पर शरीर का उदाहरण लेकर उसे बैलेंस कर रहे हैं, उसके अस्थाई रूप को बता रहे हैं कि जीर्ण होने के बाद नया लेना है, लेकिन लेना है, वस्त्र तो आएगा, तो वस्त्र को महत्व भी दे रहे हैं। शरीर को महत्व भी दे रहे हैं जितना उसे देना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं और जरूरत से कम भी नहीं। तो आज हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जो हम चर्चा आज के श्लोक से किए हैं, वस्त्र के ऊपर, शरीर के ऊपर। तो ये एक वीडियो है जिसमें हालांकि अंग्रेजी में इसका जो कमेंट्री अंग्रेजी में होगा, लेकिन यदि बिल्कुल समझ में नहीं आया तो उससे समझ में आ जाएगा कि क्या बताया जा रहा है, क्योंकि उसको उसको हिंदी में तो अनुवाद नहीं कर सकते थे। इसमें ये जो शरीर के ऊपर आज का जो आधुनिक समाज इतना अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है, उसके विषय में इस वीडियो में बताया गया है कि वास्तविकता क्या है, जो कि हम बहुत बार सुने भी हैं, लेकिन आजकल क्या है कि जब ऑडियो विजुअल के साथ देखा जाता है तो थोड़ा मन में बात ज्यादा ठीक से बैठ जाती है। तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि हमें कैसे इस शरीर का जो सही स्वरूप है वो जान लेना चाहिए और इसके परे जो आत्मा है उस पर कैसे ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए।
The human mind finds it difficult to conceive of the size of the universe we live in and the order in it. It is estimated that the universe contains some 300 billion galaxies. Our Milky Way is just one of these.
It's got treble or...
There are some two...
एक श्लोक में अर्जुन को सुनाए हैं कि कैसे ये जो वस्त्र है कैसे जीर्ण होता है। हमने साक्षात देखा कि इस वस्त्र का हाल क्या हो जाता है वृद्धावस्था में और मरने से पहले। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को निरुत्साहित नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ये जो वीडियो हमने देखा ये हमें निरुत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान को हम कितना कष्टा पकड़ें उसमें प्रोत्साहन देने के लिए, कि कैसे फिर हम इस प्रकार का जो जीर्णमयी शरीर है वो धारण न करके, ऐसी हालत अपने नहीं बना के हम भगवान के धाम को प्राप्त हों जो कि शाश्वत है, जहाँ पर सत चित आनंद का जो स्वरूप है वो नित्य रूप से रहता है। हरे कृष्ण। तो अगले श्लोक में अब भगवान ये सुनाएंगे कि जैसे कि शरीर जीर्ण हो जाता है, इसके विपरीत आत्मा वो कभी जीर्ण नहीं होता। जीर्ण तो छोड़ दीजिए, आत्मा को कोई किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता। और एक और प्रसिद्ध श्लोक, नयनम छिंदंती शस्त्राणि, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार। हरे कृष्ण। वीडियो पसंद आए, समझ में आ गया?